आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल शर्मा। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश के विकास को नई गति देने के लिए सात प्रमुख धाराओं सप्तधारा का उल्लेख किया और आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत के निर्माण पर जोर दिया। ऊर्जा और रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता भी इसी व्यापक सोच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत के लिए रणनीतिक आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है और ऊर्जा तथा रक्षा के क्षेत्र में हाल के प्रयास किस तरह भारत को अधिक सक्षम और सुरक्षित बनाने की दिशा में आगे ले जा रहे हैं। श्रोताओं, पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया में तनाव और समुद्री व्यापार मार्गों में आए व्यवधान जैसे कई घटनाक्रम देखे हैं। ऐसे समय में ये स्पष्ट हुआ है कि संकट के दौरान देश के पास अपनी उत्पादन क्षमता, तकनीक और मजबूत आपूर्ति व्यवस्था होना जरूरी है ताकि वो बिना किसी बाहरी दबाव के फैसले ले सके। ऊर्जा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बुनियादी जरूरत है। घरों में बिजली से लेकर खेतों की सिंचाई, कारखानों में उत्पादन और परिवहन तक हर क्षेत्र के लिए ऊर्जा जरूरी है। ऐसे में बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आने वाले वर्षों में बढ़ने वाली ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित, भरोसेमंद और किफायती तरीके से कैसे पूरा किया जाए। आइए अब सुनते हैं ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने के प्रमुख प्रयासों पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट।
ऊर्जा आत्मनिर्भरता से जुड़ा पहला महत्वपूर्ण पहलू है परमाणु ऊर्जा। भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में शांति एक्ट महत्वपूर्ण है। इसके जरिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का रास्ता खोला गया है। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के विस्तार के लिए निवेश, तकनीक और उद्योग की भागीदारी को बढ़ाना है। भारत में अब स्वदेशी परमाणु रिएक्टरों के साथ साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर भी काम किया जा रहा है। इस वर्ष अप्रैल में 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने पहली बार नियंत्रित अभिक्रिया शुरू की। ये भारत के स्वदेशी परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रवेश का महत्वपूर्ण संकेत है। भारत का तीन चरणों वाला परमाणु कार्यक्रम घरेलू यूरेनियम और आगे चलकर देश के विशाल थोरियम भंडार के उपयोग के जरिए लंबे समय की ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने की दिशा में तैयार किया गया है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है समुद्र में मौजूद संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल। हाल ही में सरकार ने 84,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत समुद्र में तेल और गैस की खोज के लिए बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण, गहरे समुद्र में ड्रिलिंग और बुनियादी ढांचे के विकास पर काम किया जाएगा। इसके तहत ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जोन भी बनाए जाएंगे, यानी खोज से लेकर उत्पादन और उससे जुड़ी तकनीक तथा विनिर्माण तक एक घरेलू व्यवस्था तैयार करने की कोशिश है। इसी तरह भारत भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काम कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन को केवल भविष्य के ईंधन के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसके इस्तेमाल के लिए परिवहन क्षेत्र में भी भारत ने कदम बढ़ाया है। देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता का एक और महत्वपूर्ण आधार है सौर ऊर्जा। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से अपनी क्षमता बढ़ाई है। वर्ष 2014 में जहां देश की सौर ऊर्जा क्षमता करीब 3 गीगावाट थी, वहीं जून 2026 तक ये बढ़कर 162 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। सौर ऊर्जा को घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना महत्वपूर्ण पहल है। इसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों तक रूफटॉप यानी घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली पहुंचाना है। हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत जलाशयों और अन्य उपयुक्त जल क्षेत्रों में 5,000 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर क्षमता विकसित की जाएगी। ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए केवल बिजली उत्पादन ही पर्याप्त नहीं है। देश में उपलब्ध संसाधनों से अधिक मूल्य पैदा करना और आयात पर निर्भरता कम करना भी जरूरी है। इसी सोच के तहत मई 2026 में सरकार ने कोल गैसिफिकेशन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। इसके तहत कोयले को सीधे जलाने के बजाय उससे गैस तैयार की जाती है, जिसका इस्तेमाल उद्योगों और विभिन्न रासायनिक उत्पादों के निर्माण में किया जा सकता है। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
श्रोताओं, ऊर्जा के बाद अब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की। किसी भी देश की सुरक्षा केवल उसके सैनिकों की बहादुरी पर निर्भर नहीं करती। आधुनिक युद्ध में हथियार, मिसाइल, ड्रोन, रडार, संचार व्यवस्था और दूसरी तकनीकें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जरूरी है कि देश इन महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर अधिक निर्भर न रहे। भारत में लंबे समय तक रक्षा उपकरणों की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से पूरा किया जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस स्थिति को बदलने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इस बदलाव की सबसे स्पष्ट मिसाल ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिली। इस अभियान में कई स्वदेशी प्लेटफॉर्म और प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया। इससे ये दिखा कि देश में विकसित रक्षा तकनीक केवल प्रयोगशाला या परीक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक सैन्य परिस्थितियों में भी उपयोगी साबित हो सकती है। आइए अब समझते हैं कि भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में क्या कदम उठाए हैं और इन प्रयासों से देश की सुरक्षा क्षमता किस तरह मजबूत हुई है।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की सोच के तहत भारत ने रक्षा खरीद की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। घरेलू कंपनियों से खरीद को प्राथमिकता दी गई है और कई ऐसे रक्षा उपकरणों की पहचान की गई है जिन्हें अब देश में ही बनाया जाना है। मई 2026 तक 5,521 उपकरण सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में शामिल किए जा चुके थे, यानी जिन सामान और कलपुर्जों के लिए पहले विदेशों पर निर्भरता थी उन्हें धीरे धीरे देश में ही बनाने की दिशा में काम हो रहा है। सिर्फ बड़ी रक्षा कंपनियों पर निर्भर रहने की बजाय इस व्यवस्था में छोटे उद्योगों, स्टार्टअप और निजी कंपनियों को भी जोड़ा जा रहा है। आईडेक्स जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से नई तकनीकों पर काम करने वाले स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को सेना की जरूरतों के अनुरूप समाधान विकसित करने के अवसर दिए जा रहे हैं। मार्च 2026 तक आईडेक्स के तहत 676 स्टार्टअप और नवाचारकर्ताओं की भागीदारी रही तथा 551 डिजाइन और विकास अनुबंध किए गए। रक्षा विनिर्माण के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारे भी विकसित किए जा रहे हैं। जुलाई 2026 तक दोनों रक्षा गलियारों में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका था और करीब 70,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सामने आए। इस पूरी प्रक्रिया का असर अब आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इसी अवधि में रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए हो गया, यानी भारत केवल अपनी जरूरतों के लिए रक्षा उपकरण बनाने की दिशा में ही आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि दूसरे देशों को भी रक्षा उत्पाद उपलब्ध करा रहा है। ब्रह्मोस इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से विकसित इस मिसाइल प्रणाली ने भारत में उत्पादन और तकनीकी क्षमता के विकास के साथ एक सशक्त औद्योगिक आधार तैयार किया है। आज ब्रह्मोस भारत की रक्षा क्षमता के साथ साथ उसके बढ़ते रक्षा निर्यात का भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी तरह आकाश मिसाइल प्रणाली, तेजस लड़ाकू विमान, पिनाका रॉकेट प्रणाली, स्वदेशी तोपें और आधुनिक ड्रोन तथा ड्रोन रोधी प्रणालियां ये दिखाती हैं कि आत्मनिर्भरता अब केवल हथियार बनाने तक सीमित नहीं है, इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। हथियारों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार, सॉफ्टवेयर, कलपुर्जे और नई तकनीकों तक। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
श्रोताओं, ऊर्जा और रक्षा दोनों क्षेत्रों की ये यात्रा एक बात स्पष्ट करती है कि रणनीतिक आत्मनिर्भरता किसी एक योजना या किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसका संबंध देश की अपनी क्षमता विकसित करने से है, चाहे वो ऊर्जा क्षेत्र हो, नई तकनीक हो या महत्वपूर्ण उपकरणों का देश में उत्पादन। अब आने वाले वर्षों में चुनौती ये होगी कि इन प्रयासों को और बड़े स्तर पर ले जाया जाए, नई तकनीक में निवेश बढ़े, निजी उद्योग और छोटे उद्यमों की भागीदारी बढ़े, देश में जरूरी कलपुर्जों और कच्चे माल का उत्पादन हो और हमारी आपूर्ति व्यवस्था किसी भी बाहरी संकट का सामना करने में पूरी तरह सक्षम बने। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक अलका सिंह।